نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد नमाज दिल का सुकून, यह है हमारा आज का टॉपिक। और थोड़ी सी बात पीछे से जोड़ते हुए, आज का ये हमारा लेक्चर पीके ट्रिप 2022, मुंह पे भी नहीं अभी चढ़ता है, अभी 21 ही कहती हूँ। ऐसे में ये ट्रिप 21 में शुरू हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह 22 आ गए और ये चल रहा है, और अल्लाह करे कि ये चलता ही रहे और हर दिन हमारा अल्लाह की इस किताब के साथ गुजरे। और आप में से जो लोग YouTube या Facebook से या किसी भी और चैनल से मैं फॉलो करते हैं तो आपको मालूम है कि ये सीरीज चल रही है और इस सीरीज का नाम है ज़हर अल फसाद फिल बर्री वल बहर, खुश्की और तरी में फसाद फैल गया। ये क्या होता है? बंदे के अपने रब से भी ताल्लुकात कमजोर हो गए और इंसानों के इंसानों से भी ताल्लुकात कमजोर हो गए। फसाद का मतलब यही है, बिगाड़ पैदा हो जाना, खाना बिगड़ जाता है, उसमें स्मेल आने लगती है, दूध बिगड़ जाता है तो फट जाता है। इसी तरह इस दुनिया में मालिक ने हमें पैदा किया जिस मकसद के लिए पैदा किया था, जब वो मकसद छोड़कर हम वो चीज़ें जिनको इस्तेमाल करने का हुक्म दिया था, जब उनको मकसद हयात बना लेते हैं तो फिर वो कहते हैं ना कि कारे जहां दराज है अब मेरा इंतज़ार कर। अल्लाह ने हमें ये दुनिया खाने पीने ओढ़ने पहनने के लिए दी कि मेरा बंदा खुश रहे और उसके बाद मेरे गुन गाए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की सूरत में मेरी हम्द के तराने पड़े और साथ ही साथ उसको यकीन हो कि मेरा रब जो है वो मेरे हर मामले को अपने हाथ में रखकर मुझ पे इतना बड़ा एहसान करता है कि मेरे इस बंदे को किसी और की जरूरत ही ना रहे। लेकिन अफसोस की बात है कि आज इंसानों का, और इंसानों में से भी उनका जो खुद को मुसलमान कहते हैं, बाकियों की तो हम बात ही नहीं करते, क्योंकि रब ने तो या अय्युहन नास उबुदु रब्बकुम का पैगाम सबको दिया था, ओ मैनकाइंड वर्शिप योर लॉर्ड, ए इंसान अल्लाह की इबादत कर, रब का पैगाम उसके बंदों के नाम, कुरान तो सभी के लिए। लेकिन जब खास तौर पे हम खुद को मुसलमान कहते हैं कि वी आर मुस्लिम, तो उसका एक छोटा सा मफहूम होता है कि वी आर पीसफुल पीपल, क्योंकि इस्लाम को पीस कहते हैं ना, अमन सुकून। लेकिन मेरा सवाल जो आज के इस लेक्चर की बुनियाद बनेगा और वो क्या है कि क्या हम आज पीसफुल हैं? क्या आज का मुसलमान अपने आप को पुरसकून पाता? देखिए, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत क्या है? आप कहेंगे करेंसी में शायद कवैत का रियाल, शायद वो सबसे बड़ा, दिरहम बोलते हैं उसको या कुछ और बोलते हैं तो बता दें, दीनार, मेरा गुमान यही, आगे और भी कोई करेंसी हो सकती है। लेकिन देहन में एक सवाल आता है कि कतर का दीनार जो है वो अगर करेंसी में सबसे बड़ा है तो आप कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। धातों में देख लीजिए तो हमारे गुमान के मुताबिक प्लैटिनियम बहुत कीमती धात है, सोने से ज्यादा हीरे यानी गोल्ड से ज्यादा डायमंड की वैल्यू है। इसी तरह अगर आप घड़ियों की बात करें तो हमारे गुमान में आते हैं ना कि घड़ियों में शायद, शुरू से हम राडो घड़ी का नाम सुनते हैं, अक्सर दामादों के लिए लोग दिल पे पत्थर रख के लेते थे कि ये जरा दामाद साहब सीधे रहे, बेटी को किताने ना दे दें, तो वो इस तरह की चीजें हम सुनते हैं। यानी हर वो चीज जो जिसमें आज हम रहते हैं उसमें से कोई ना कोई चीज दूसरी से कीमती होती है ना। गाड़ियों में हो सकता है लैंड क्रूजर हो, और इसी तरह से टल्सा गाड़ी आजकल नॉर्वे में बड़ी फेमस है, वो होगी ना। हम क्या सोचते हैं कि इन सारी चीजों को जिनको मैंने आपके सामने मेंशन किया ये बड़ी दौलत है, हालांकि आप देखिए ये सब कुछ भी हो और दिल को सुकून ना हो, दिल में खुशी ना हो तो क्या फायदा। अच्छी गाड़ी में बैठकर भी मैंने लोगों को रोते देखा, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स में हनीमून के लिए जाने वाले शौहर बीवी को झगड़ते सुना है, जानती हूं ऐसे लोगों को भी, बड़े बड़े घरों के अंदर से कह लीजिए कि उदासियां और बेसकूनी की आवाजें आती हैं। तो क्या पता चला कि सारी दौलतों से बड़ी दौलत दिल का सुकून है, क्योंकि आप पैसे दे के सब कुछ खरीद लेते हैं, तो जिसके हाथ में पैसा है वो कर ले, कहते हैं कि पैसा फेंक फिर तमाशा देख, है ना। लेकिन एक चीज पैसों से नहीं मिलती, वो सोना बेच के भी नहीं आती, वो करेंसी देकर भी नहीं आती, वो आप सब कुछ भी दे देंगे तो नहीं आती, और वो दिल का सुकून है। तो दिल के सुकून के लिए अल्लाह ने नमाज रखी है, लेकिन लिखिए कौन सी नमाज सुकून देगी जो सुकून से बढ़ी जाएगी। फिर बोल देती हूँ, हम आज नमाजी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, किसी हद तक 5 वक्त के नमाजी तो बहुत से लोग हैं, खास तौर पे मर्दों में से औरतें, और तहज्जुद भी पढ़ते हैं कुछ लोग, इसी तरह से इशराक का भी इख्तिमाम है, और जुमे के जुमे तस्वी नमाज भी पढ़ते हैं, रमजान में 8 नहीं 20 तरावियां पढ़ते हैं, है ना। इबादत तो है, सुकून क्यों नहीं। देखिए आज की इंसानियत सुकून की मतलाशी है। मैं दुनिया के उस कोने से आपके पास आई हूं कि जहां लोग एड़ियां उछालकर पंजों के बल खड़े होकर जाने की ख्वाहिश करते हैं। अब तो मुझे नहीं पता, लेकिन पहले मैंने जब आज से 15-20 साल पीछे झांकू ना, तो लोग घर बेच के अमेरिका का वीजा लगवाने को तैयार थे। दुबई चलो तो एक सीरीज भी चली थी ड्रामों की। बीवियों के जेवर बेचकर कई लोग दियारे गैर में गए, और फिर वहां जाके समझ आई कि ये कोई परिस्तान नहीं है, ये कोई हूरों की या ऐसी बातें नहीं। और लोग क्या सोचते हैं कि यदि पाकिस्तान से बाहर जाएंगे ना, तो एयरपोर्ट पे एक दरख्त लगा होगा जिस पर डॉलर्स लटक रहे होंगे, और हूरें हमारे लिए फूलों के गुलदस्ते लेके खड़ी होंगी, दूर के ढोल सुहाने। हमने ये दुनिया में मुहावरा बड़ी दफा सुना है। मैंने अंदर जाकर देख लिया, अल्लाह ने मेरी जिंदगी के तकरीबन आज 22 है ना, तो सीधा हिसाब है मेरा, 22 ईयर्स हो गए मुझे बाहर की दुनिया को देखते हुए। पहले हम यहां बैठकर देखते थे और सुनते थे, मीडिया था, फिल्मों में पेरिस फिल्मों में दिखाते थे, क्या पेरिस है। चार्ली एक परफ्यूम होता था, टीवी पे उसकी एडवर्टाइजमेंट आती थी, उसमें एफल टावर दिखाते थे, उसकी शक्ल भी कुछ एफल टावर की ही बनी हुई है। मुझे अच्छी तरह याद है कि ज़ारे हम पे भी जवानी गुजरी है, यानी अर्ली जवानी, 15-16 साल की उम्र दीवानी ही होती है, तो जो इर्द गिर्द कॉलेज स्कूल के असर से चीजें हमें दिखती थी, तो उसमें कहते थे हाय पेरिस, क्या वो परिस्तान होगा, क्या परियां नाचती होंगी। मेरे अपने दिमाग में पेरिस और एफल टावर ऐसे ही था, कोई फैंटेसी है, हर एक का एक इमेजिनेशन होता है ना, तो उसी तरह मेरे भी जहन में कुछ था। फिर मैं जब पाकिस्तान से मेरा डायरेक्ट सफर जो था वो अमेरिका पे था, चला गया, यानी मैंने अपनी सारी जिंदगी का जो कह लीजिए कि जो तदरीस का जिस वक्त सिलसिला आप देखते हैं, तो इसका नुक्ता आगाज पाकिस्तान के बाद पहले अमेरिका में किया, फिर वहां से वापस पलटी, और बीच के यूरोप से घूमती हुई आज भी आपके पास हूं। यकीन कीजिए आप और मैं दूर से जो चीज देखते और सोचते हैं ना, वो सच नहीं है। सारे मुहावरे बोल देती हूँ जो मुझे कोई इस वक्त याद आ सकते हैं, कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ऊपर आप वेनीर चढ़ा दे गोल्डन रंग का, मट्टी चूने की दीवारें हैं, और आप उसके ऊपर एक कागज लगा दें गोल्डन कलर का, तो क्या वो दीवार सोने की बन जाती है? नहीं होती ना, सबको पता है। लुक लाइक गोल्ड हो सकता है, लेकिन ये हमारे बर्तनों पे जो गोल्डन रंग होते हैं वो सोना नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह वो दुनिया जिन्होंने दुनिया की हर नेमत पाली अपने जोम से, उधर सड़कें भी साफ हैं, उनके गटर भी नहीं उबलते, वहां की सड़कों में बम्प्स भी नहीं है, वहां चोरी चकारी का अंदेशा भी नहीं। मैं एक दो मुल्कों के अलावा उसकी नहीं बात करती, नाम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि गीबत जो है वो इंसानों की बुरी है तो जगहों की भी बुरी है, लेकिन हम सोचते हैं कि वहां लोग खुली चीजें छोड़ दें, तो ऐसा नहीं है। खुदा खौफी ही ऐसी चीज है जो सामने किसी की चीज पड़ी हो तो उसको हाथ ना लगाए बंदा। एक दफा ऐसा ही हुआ था कि जिसमें आप देखते हैं कि थोड़ी देर के लिए बिजली चली गई थी, जिस मुल्क की मैं बात कर रही हूं, थोड़ी देर के लिए बिजली चली गई थी, और आपको पता है कि वहां लूट मार मच गई थी, क्योंकि कैमरे ऑफ है, तो अंधेरे का फायदा उठाकर उन्होंने दुकानों की दुकानें लूट ली। और एक तरफ वो भी जगह हमने अपनी आंखों से भी देखी है कि जहां रूहानियत के साथ अगर इस्लाम और कुरान आता है, तो आप देखते हैं कि वहां खुली दुकानें हैं गोल्ड की, हय अल सलार अल फलाह की आवाज पे दुकानें छोड़ के चले जाते हैं ना। तो अल्लाह का खौफ और तकवा बहुत बड़ी बात है। तो जो बात मैं आपको अभी फर्स्ट थिंग जो आज कहना चाहूंगी वो ये है कि रुपए पैसे दौलत अच्छी सड़कें और अदल इंसाफ भी वहां बहुत है, हुकूमत बहुत रियायत देती है, भूखा कोई नहीं सोता, जो जॉबलेस होते हैं उनको ज्यादा देती है गवर्नमेंट, क्योंकि वो बेचारे जॉबलेस हैं। इसके बावजूद जिस चीज की वहां कमी है वो सुकून है। ट्रैंक्विलाइजर्स खाए बगैर नींद नहीं आती, नरम गरम बिस्तरों पे करवटे पलटते हैं, इतने किस्म के सीरियल के शायद उस दीवार से लेके इधर तक आयल में 15-20 किस्म के सीरियल लगे होंगे। आप ग्रोसरी स्टोर्स में जाएं तो यकीन नहीं आता कि ये सब रियल है क्या खाएं। यानी हर वो चीज़ जिसका एक इंसान अपनी ज़िंदगी में तसव्वुर भी कर सकता है, इसके बावजूद वहाँ सुकून नहीं है। इसलिए कि सुकून किधर है, अल्लाह सुबहाना तला सूरत और रात की आयत 28 में फरमाते हैं, अल्लज़ीना आमनु व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। आप सबको ये आयत आती है, मुझे पता है उर्दू में मैं बोलूंगी तो आप समझ जाएंगे। फरमाया अल्लज़ीना आमनु, ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने अपने इस नबी की दावत को मान लिया और इनके दिलों को अल्लाह की याद से इत्मीनान नसीब होता है। खबरदार रहो, क्या अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह की याद ही वो चीज़ है जिससे दिलों को इत्मीनान नसीब हुआ करता है। तो आज का हमारा टॉपिक नमाज दिल का सुकून। मौजू के साथ इसकी मुमासलत क्या है, फसाद कैसे फैला जब हमारी नमाजें बेरूह हो गईं। हमारी नमाजें इन्नस सलाता तन्हा अनिल फख्शाई वल मुनकर के मुतरादिफ नहीं रहीं। 21वें पारे की पहली आयत जाकर ढूंढ लीजिए, पहली के साथ ही दूसरी मिलती है कि नमाज बेहयाई और मुनकर से रोकती है। कुरान कहता है जैसे डिस्प्रीन और एस्प्रीन का एक असर होता है ना, शायद एस्प्रीन खून को पतला करती है, डिस्प्रीन पेन किलर है, हर दवा का एक असर होता है ना, करेलों की तासीर गर्म है, तरबूज की तासीर ठंडी है ना, चीज़ों और दवाइयों की कुछ तासीर होती है कि आप करेले खाएंगे और अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो ब्लड प्रेशर हाई होगा और चीनी खाएंगे तो शुगर तो तेज होगी ना। इसी तरह नमाज की एक तासीर है और वो क्या है कि नसलात तनहा अनिल फख्शाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और मुनकर से रोकती है। यानी जो नमाजी होगा ना उसकी जिंदगी में फोहश को देखना सुनना और वहां रुकना नहीं होगा। वाइजा मर्रु बिल लगवी मर्रु किरामा, सूरह फुरकान का आखिरी रुकू इबादुर्रहमान में अल्लाह ने बिल्कुल शुरू में इबादुर्रहमान की सिफत रखी कि अगर किसी बेहया चीज से या कोई ऐसी कह लीजिए वल्गर चीज के पास उनका गुजर हो जाए ना तो बैठते नहीं है, इज्जत से गुजर जाते हैं। यानी ऐसी महफिलों में बैठने को अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं कि जैसे आप सोचिए कि कचरे के ढेर पे कोई नहीं बैठता ना, कोई भी नफासत वाला शख्स, या एक बड़े अच्छे घर का औरत या मर्द इतवार बाजार से जाकर शॉपिंग नहीं करते होंगे, वो लिबर्टी या कहीं ऐसी जगहों पर तो जा सकते हैं लेकिन इतवार बाजार पर नहीं जाएंगी, उनको लगता है इट्स बियॉन्ड आवर स्टेटस। तो जो हकीकी मुसलमान होता है ना वो ऐसी जगहों में बैठने को अपनी बेइज्जती महसूस करता है। वो कहता है मैं इतना गिरा हुआ, मैं एक रोटी खाने के लिए इधर बैठ गया हूँ, सिर्फ मैं गिफ्ट देने के नाम पे इधर आके बैठ गई हूँ, मलकुल मौत आ गया तो मेरा ठिकाना क्या होगा। मौजू आज ये नहीं है, इस पर अलग करेंगे किसी वक्त बात इंशाल्लाह, लेकिन नमाज हमें आज बेहयाई से नहीं रोक रही इल्ला माशाल्लाह। पहली बात समझ आ रही है कि नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन दुनिया में माशरे में नमाजी भी बढ़ते जा रहे हैं और दिन ब दिन एलेबोरेटेड और थीम सेटल्ड मैरिजेस भी बढ़ती जा रही हैं, वेडिंग्स पार्टीज और जो कुछ आज हमारी शादियों में होता है। ये कभी किसी दौर में इंडियन फिल्मों में लोग सोच लेते थे कि होगा और हाथ में रिमोट पकड़ कर खड़े हो जाते थे कि ऐसा कोई सीन आ गया तो आगे पीछे कर देंगे, और क्या कहते थे बच्चों के देखने वाली चीजें नहीं है। हम बड़े हुए तो हमें पता चला ये तो बड़ों के भी देखने वाली नहीं है, शौहर बीवी रात की तन्हाई में नहीं वो देख सकते जो लोग बच्चों से छुप के देखते थे, है ना। तो इसका मतलब पहली बात तो साबित हो गई कि मुआशरे से बेहयाई और मुनकर के कम होने की बजाय उसका बढ़ना और उसका फैलना इस बात की दलील है कि आज हमारी नमाजें बेरूह हैं, हमारी नमाजें असर नहीं कर रही। जैसे कभी कोई बहुत पुरानी गोली खा ले तो असर नहीं करती ना, और मैं वो लफ्ज़ तो नहीं बोलना चाहती, यहाँ हमारे मुल्क में तो खैर शायद ही इसको कोई इतना देखे, लेकिन वो क्या है ये एक्सपायर्ड है। बल्कि आप जब एक्सपायर्ड गोली खा लेते हैं तो ये नहीं होता कि वो आपका दर्द सर नहीं ठीक करती, वो कुछ रिएक्शन भी करती है, हो सकता है आपका दिल कट जाए, हो सकता है आपको कोई और मुश्किल आ जाए। तो आज हमारी नमाजें एक्सपायर्ड नमाजें हैं, पहली बात। दूसरी बात देखिए कि नमाज पढ़ने के बावजूद भी माशरे पे अमूमी तौर पे बेसकूनी है, परेशानी है। आम तौर पे हमें ऐसे महसूस होता है कि हम अपनी इस नमाज को फर्ज समझकर, बोझ समझकर अदा कर रहे हैं, और गुमान क्या है कि अगर ना पढ़ी तो फिर जन्नत में कैसे जाएंगे। बताइए सच है कि नहीं। बीइंग अ मुस्लिम हम नमाज पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं कि नमाज जन्नत की कुंजी है, शुरू से सुना हुआ है, और नमाज ना पढ़ी तो कुफर है, बैनल कुफरी वाले इस्लाम भी तरकुस सलात है ना। तो हम क्या कहते हैं भाई, अब नमाज पढ़नी तो है, क्या करें। कुछ इसलिए पढ़ते हैं कि आदत है, बचपन से आदत पड़ गई है, पढ़नी तो है। लेकिन नमाज की वो जो तासीर थी कि वो दिल को सुकून देती है, वो नहीं मिलती। एक नमाजी बीमार हो सकता है लेकिन बेसकून नहीं, एक नमाजी गरीब हो सकता है लेकिन वो बेसकून नहीं हो सकता, एक नमाजी बे औलाद हो सकता है मगर बेसकून नहीं हो सकता, एक नमाजी की बीवी मतलब उसके साथ अच्छी नहीं या उसका शौहर उसके साथ अच्छा नहीं, ये मुमकिन है लेकिन बेसकून नहीं होगा। नमाजी का दिल ऐसे बर्फ की ठंडक की तरह ठंडा होता, हत्ता के सहाबा इकराम मैदान जंग में जाकर वो सजदों के आदि थे कि वहां सर नीचे रखकर नमाजें पढ़ते थे, कोई काटता है ऊपर से तो काट दे। अल्लाह के नबी से ज्यादा एक्साइटमेंट वाली जिंदगी तो किसी की नहीं है ना। दिन कहीं तो रात, कहीं सुबह, कहीं तो शाम, कहीं अभी एक चैलेंज से दूसरे चैलेंज पे आए तो दूसरे से तीसरे पे आ गए, लेकिन आप देखिए कि बेसकून नहीं थे आप। ओहद में दान टूटा, शहीद कर दिया गया, हौद की कड़ियां इधर खुब गई, ये बड़ा नाजुक सा हिस्सा होता है, ये कुरकुरी सी हड्डी ना आंख के अंदर, ये इसके अंदर लोहे की चेन फंस गई थी, लेकिन आप बेसकून नहीं थे। ताइफ के सफर में पांव में जूते चिपक गए खून निकलने से, मगर आप बेसकून नहीं थे। बदर में अचानक ऐसे हालात बन गए कि जंग हो गई, हालांकि उम्मीद नहीं थी इतनी झड़प होगी, लेकिन आप बेसकून नहीं थे। ओहद में भगदड़ मच गई, 50 की जगह सिर्फ 10 लोग वहां रह गए और आपके 70 साथी शहीद कर दिए गए, लेकिन आप बेसकून नहीं थे। आपकी पूरी जिंदगी 23 साल जिंदगी देख लीजिए, जो नबी जिंदगी और उससे पीछे की भी 25 साल जिंदगी, आपकी जिंदगी बहुत कह लीजिए कि अप्स एंड डाउन्स में रही, ऊपर नीचे रही। अल्लाह खुद कहते हैं बद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दक रब्बुक वमा क़ला। अल्लाह को आसमान से कहना पड़ा कि डोंट वरी, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। आसमानों से अल्लाह सुभान तआला पुकारे देकर कहता था डोंट वरी, ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतने अबतर हालात थे लेकिन आप बेसकून नहीं थे, यही हाल सहाबा का था। जख्मों से खून रिश्ता था लेकिन बेसकून नहीं थे, वो पोर पोर तक दुश्मन के तीरों तलवारों में खुबे होते थे लेकिन बेसकून नहीं थे। क्यों? इसलिए कि नमाज में जब दिन में 5 बार आप अपने इतने प्यारे मालिक से बातें कर लेते हैं ना, तो फिर बेसकूनी नहीं रहती। बेसकूनी पता क्या है, आपको भूख लगी है, भूख लगी है, खाना नहीं आप खा रहे, फिर और लगती है, फिर पेट में से क्रम्स पड़ते हैं, फिर आप और नहीं खाते कुछ घंटे अगर तो दिल डूबता है, लेकिन जो ही खाना खा लेते हैं तो आसानी, फिर वो सारी कैफियत खत्म हो जाती है ना। बल्कि अगर आप और थोड़ी देर ना खाते तो सर में दर्द शुरू हो जानी थी, प्यास लगी प्यास लगी, खैर है थोड़ी देर और लगी, थोड़ी देर और लगी, फिर गला छिलने लगता है, वॉशरूम में जाना हो, ये कैफियत क्या हो जाती है जब आपको वॉशरूम यूज करने और आप जा नहीं पा रहे, बेसकूनी होती है ना। जब आप अपनी हाजत पूरी कर लेते हैं, खाने की कर ली तो मैदा सुकून में है, आपने पीने की कर ली तो गले को सुकून मिल गया, आपने वॉशरूम यूज किया, आप कहते शुक्र है सुकून लग गया। दैट मीन हम अपने जिस्म के इस फितरी निजाम के अंदर कोई भी चीज जो के अल्लाह ताला ने रखी है उसको फुलफिल कर लेते हैं तो सुकून आ जाता है। जिंदगी के और भी बहुत सारे मामलात है, जब वो हल हो जाते हैं तो सुकून मिल जाता है, लेकिन जब हम किसी चीज को सही तरीके से नहीं करते तो बेसकूनी होती है। तो पता क्या चला कि फुलफिलमेंट का नाम है सुकून। नमाज फुलफिलमेंट का जरिया थी। एक है नमाज ना पढ़ना, उसको जरा साइड पे कर दीजिए, वो तो मुर्दा दे रहा, दिल मुर्दा है वो, उसके तो अल्लाह ताला के साथ ताल्लुकात ही अच्छे नहीं है। बात हो रही है नमाज पढ़ने वालों की। वो सहाबा में से एक सहाबी थे कि जिनके जिस्म में एक तीर लग गया था, और रिवायत में था कि वो तीर किसी हड्डी में खुब गया, पीछे बोन में चला गया ना, प्रेशर से चला तो गया। अब जब उसको निकालना चाहते हैं तो चीखें निकलती हैं। अब क्या हुआ कि तीर खुब गया, निकालना चाहते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है, खैर इतनी देर में नमाज का वक्त हुआ तो कहने लगे कि दोस्तों, जब मैं नमाज में होता हूं ना तो मुझे होश नहीं रहती, तो तुम मेरी नमाज के दौरान कोशिश करना। खैर नमाज शुरू कर दी, पूरी पढ़ ली, और नमाज पढ़ने के बाद कहते हैं कि तुम्हें मौका दिया था तो तुमने उसका फायदा नहीं उठाया, मेरा तीर नहीं निकाला। तो उन्होंने कहा कि वो तो पहले ही रुकू से पहले ही निकाल लिया था। जी ये है अला बिज़िक्रिल्लाही तत्मइन्नल कुलूब। और याद रखिए कि दिल का सुकून हर एक की तलब है। हर चीज के एक हिस्सा है ना, जैसे अभी मैंने मिसाल दी कि मैदा चाहता है खाना, लंग्स चाहते हैं ऑक्सीजन, गुर्दे चाहते हैं पानी, दिल चाहता है सुकून। ये सुकून जब दिल में आता है ना तो हर चीज अच्छी लगती है, और दिल में सुकून ना होना तो शादी वाले घर में लोगों का हंसना बोलना भी बुरा लगता है। और जब लोगों ने सुकून की तलाश की, कोशिश की क्या वो सुकून ढूंढते हैं, तो किसी ने किताबों में सुकून पाना चाहा, कोई सैर व तफरीह के मूड में हो गया, किसी ने खेल कूद को अपना शौर बनाया, कोई जदीद आलात के जरिए सुकून ढूंढने लगा। लेकिन अफसोस क्या है कि या तो पैसा जाया हो गया या ईमान चला गया, कुछ ऐसी चीजें देखने लगे कि ईमान खतरे में पड़ गया। आज का इंसान आप देखिए कि एंटरटेनमेंट के नाम पे कितना पैसा लगाता है, असल में वो सुकून चाह रहा होता है, तो पता चला 3 घंटे की फिल्म देखने के बाद और सर में दर्द शुरू हो गया। ऐसे ही है ना, कभी ऐसी चीजें देख लेता है जिससे ईमान खराब हो जाता है, कभी ऐसी बातें सुन लेता है बेकार वल्गर डायलॉग जिससे अखलाक खराब हो जाता है, और कभी सेहत खराब हुई तो कभी वक्त जाया हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने उसको ठीक तरीके से लिया नहीं। तो सवाल ये फिर पैदा होता है कि जब इन सारी चीजों से सुकून ना मिले तो फिर सुकून कहाँ से मिलेगा? तो नमाज दिल का सुकून है, इत्मीनान कल्ब का वाहिद जरिया नमाज। अकीम सलाता लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये पैगाम दिया था नबूवत मिलने के वक्त, तो अल्लाह ताला से ताल्लुक का क़याम हो, इत्मीनान कल्ब पाना हो, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक पैदा करना हो, इसका बेहतरीन जरिया नमाज है। और वो किसी ने बहुत ही प्यारा जुमला कहा कि हमारे शौके कलाम की लाज अल्लाह ने नमाज के जरिए रखी है। मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, अल्लाह ताला से बातें कर लिया करते थे, एक बंदे का भी दिल करता है। अब आज मैं आप अल्लाह से कैसे कलाम करें? इया का नाबुदू व इया का नस्तईन, ये जो पूरी सूरत फातिहा है ना, ये असल में हमारा अल्लाह ताला के साथ मामला होता है। कैसे ये मामला होता है कि आओ तुम मेरे से बातें कर लो। अब देखिए कि अमूमन बड़े लोगों से बात करने के लिए लोग बेचैन होते हैं, 2 मिनट हमारी बात सुन लें। अब जो जैसा बंदा होता है ना उसको वैसे ही बंदा अच्छा लगता है, कोई खेल का शौकीन बच्चा है तो उसको खिलाड़ियों से बात करने का शौक होगा, कोई फिल्म ड्रामा देखता है तो उनको आर्टिस्टों से मिलने का शौक होता है, इसी तरह अगर किसी में कोई दीन का शौक है तो उसका दीनी लोगों को मिलने का शौक होगा। नमाज सबसे बड़ी हस्ती के साथ बातचीत का जरिया है। अगर हमारे दिल में अल्लाह से कलाम करने का शौक है तो नमाज, हम सभी जानते हैं शुरू से सुनते आ रहे हैं कि नमाज मेराज का तोहफा है, बल्कि अगर एक जुमला दोबारा सुन लें, शायद कभी पहले सुना हो, कि सारी शरीयत जमीन पे मिली और नमाज मेराज पे जाकर दी, बुलंदियों पे दी। अल्लाह के नबी ने मेराज की ऊपर जाकर, बंदा मोमिन की मेराज जमीन पे हो जाती है नमाज पढ़ के। लेकिन ये वो कोई फीकी चाय वाली नमाज नहीं होगी, ना उसमें चीनी ना शक्कर ना गुड़, ये वो नमाज होगी जिसको नमाज कहते हैं, जिसमें बंदे का शौक झलकता है, जिसमें इंसान का ज़ौक झलकता है। और नमाज का हकीकी मकसद ही क्या है? अल्लाह की याद। सूरह तौहा की आयत 14 अगर आप नोट कर लें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने वादिय तूर के दामन में पुकारा था मदियन से मिस्र जाते हुए, तो क्या कहा था? इन्ननी अनल्लाह, ला इलाहा इल्ला अना। हम कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अल्लाह ने खुद अपने लिए कलमा कहने पड़ा कि ला इलाहा इल्ला अना, कोई ला नहीं मगर मैं। क्या करो, फाबुदनी मेरी इबादत करो, और वाकिमिस सलात अली जिक्री और नमाज अदा करो मेरी याद के लिए। मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने नमाज की आदत डालना चाहिए, और याद है कि हर नबी ने नमाज अदा की। हमारे अपने प्यारे नबी का मामला क्या था, आपका नमाज से क्या ताल्लुक था? जब कभी किसी परेशानी का सामना होता आप नमाज में मशगूल हो जाते, तेज आंधी आती तो नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाते, खुश्क साली होती तो सलातुल इस्तस्का बारिश की तलब वाली नमाज पढ़ते, ग्रहण लगता तो सलातुल कुसूफ या सलातुल खुसूफ सूरज और चांद के फर्क के साथ, घर वालों पर कोई तंगी या परेशानी आती तो नमाज का हुक्म देते। क्यों भला? इसलिए कि नमाज के जरिए तस्कीन मिलती है कि मेरा रब मुझसे दूर नहीं है। और याद रखिए, नमाजी बेसब्रा नहीं होता बल्कि पुरसकून होता है। इसकी दलील है कुरान में सूरत मारिज की आयत 19 से 23, जाकर देखिएगा। अल्लाह सुब्हानहु तआला फरमाते हैं, इन्नल इंसान खुलिका हलुआ, बेशक इंसान तो थुड़ दिला पैदा किया गया। और हलू के लफ्ज को उर्दू में नहीं समझ आता, इंग्लिश में बड़ा अच्छा समझ आता है, एंग्जाइटी हाइपरनेस, यानी इंसान अपनी तबीयत से चुलबुला। आप देखिए ना, दिल की धड़कन, बच्चे की मां के पेट में दिल की धड़कन से ही आवाजें आनी शुरू हो चुकी होती है ना। अब आप उसको जहन में रखिए, जिंदगी, इंसान को इंसान क्यों कहते हैं? नौस, शोर मचाने वाला, बोलने वाला, शोर करने वाला। हमारे दिल की धड़कन खुद एक आवाज है, स्टेथोस्कोप कभी लगाकर सुनी हो तो आवाज कितनी गहरी आती है। बिल्कुल इसी तरह से इंसान के अपने मिजाज के अंदर, जिसको कहते हैं ना थोड़ा दिलापन, लेकिन निजा मस्सहु शर्रु जजुअन, अल्लाह कहते जरा सी तकलीफ आती है जजो फजा शुरू कर देता है, जैसे वो लाडला बच्चा या जिद्दी बच्चा जरा सी कोई कैंडी भी ले रहे तो रोना शुरू हो जाता है। वैजा मस्सुल खैरु मनुआ, जब खैर छूती है, अभी अंदर नहीं गया, जस्ट टच करती है खैर, कोई खुशी, कोई मंगनी, कोई ब्याह, कोई बच्चे का पैदा होना, कोई दौलत माल मिलना, मनुआ, फिर तो वो मना करने वाला हो जाता है, यानी फिर आपे से बाहर हो जाता है, कहता है पीछे हो जाओ, खुशी का मौका आ गया। तो अब मैं बोला खुशी के मौके पर अल्लाह को ना नाराज करूं तो और किसको करूं? और अफसोस के साथ आज हमारी कई खुशियां मुंह बोलकर बता रही हैं ये बात कि और कब नाराज करेंगे अल्लाह को अगर हमने इस मौके पर नहीं नाराज करना। इज इट ट्रू और नॉट? पूरा मुकाबला, ऊपर नीचे का मुकाबला, फायजन बेहरब मिन अल्लाह वाली बात इधर हो गई है। ऐसे लगता आखिरी खुशी थी जो अल्लाह से मांगी थी, बस इसके बाद तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़नी। ये आखिरी दुआ ही कबूल हुई है जो 2 साल से रिश्ता मांग रहे थे, अल्लाह बच्चे का रिश्ता करा दे, अब हो गया, अब अल्लाह भी देखेगा कि मैंने किसकी दुआ कबूल की है। जब तक नाच फुदक के ना मां दिखा देगी, शादी नहीं होगी। मैं एक बात कर रही हूं, ये थुड़दिलापन, अब बैठा हुआ एक बंदा उठ के उछलना शुरू हो जाए, कहना चाहिए कि नाचना शुरू कर दे, जरा सोचिए वो हलुवन नहीं है? आप में से अल्लाह ना करेगा एकदम को उठकर खड़ा हो कैसे ले, हम कहेंगे पता नहीं कोई चींटी चढ़ गई, कोई चिपकली आ गई, क्या हो गया, बेचैनी है ना। कभी आप लफ्ज डांस को इस हलू पे रख कर देखिए, आवाज बंद करके, अगर आपकी नजर पड़ती है ना स्क्रीन पे, आपको हलू लगे, इनको हो क्या गया, इसमें खुशी कहां से आ गई, ये तो कोई ओछापन लगता है, हलू ओछापन। इल्लल मुसल्लीन, लेकिन नमाजी ऐसे नहीं होते। अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, आप कहते नहीं हमने तो ऐसे बड़े देखे हैं। अल्लाह कहते नहीं, मैं आम नमाजियों की नहीं बात करता, वो नमाजी जो अपनी नमाजों पर दवाम रखते हैं, कंटिन्यूस नमाजी, मुस्तकिल, कजा नहीं करते, डिले नहीं करते, कभी पढ़ी कभी नहीं पढ़ी, ऐसा नहीं करते, बल्कि हकीकत में वो अपनी नमाजों को अपने अमल से दिखाते हैं। देखिए, किसी की ट्रेनिंग होती है ना, तो ट्रेनिंग कोई चीज नहीं होती, ट्रेनिंग का मतलब है कि जब वो वक्त पड़े तो वो अच्छा बिहेव करे, ऐसे ही है ना। आप किसी को इतना सिखाए, अच्छा ऐसे करना ऐसे करना, ये ट्रेनिंग है। अब जब वो वक्त आए तो उस वक्त वो वैसा ना करे जो उस वक्त बिहेव कर रहा था, तो आप कहेंगे क्या फायदा हुआ तुम्हें बताने का? बच्चों को आप 10 दफा बताएं, मेहमान आ रहे हैं, सुकून से बैठना, ऐसे ना करना, वैसे ना करना, बड़ा अच्छा, जी जी जी, और जब मेहमान आ जाए तो वो सोफों पर चढ़ के नाचे, क्या अब किसने रोकना है, अब सामने क्या होगा? तो आप कहेंगे कि ये तुम्हें इतनी प्रैक्टिस किस बात की कराई थी? ये जो नमाज है ना, देखिए 2 से ज्यादा बार कुरान में नमाज और सबर को इकट्ठा किया गया, वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। नमाज और सबर साथ साथ है, कैसे? अमूमन देखिए, इंसान के नफ्स की ख्वाहिश क्या होती है? नंबर 1 खाना, सोना, बोलना, और आप तीन चीजें ये जो मैंने गिनी है नमाज में कर सकते हैं, आप नमाज में खा सकते हैं, आप नमाज में सो सकते हैं, आप नमाज में बोल सकते हैं। कोई खड़ा आपको गाली दे रहा है और आप नमाज में हैं, जब आप दे सकते हैं, तो ये ट्रेनिंग है कि जब गैर नमाज की हालत में तुम्हें को बुरा के, को भला के, को तुम्हें तीली दिखाए, तो ठंडे रहना। क्या पता चला कि नमाजी बेसब्रा नहीं होता बल्कि पुरसकून होता है। अल्लाह ने तो कह दिया कि इंसान थोड़ा दिला पैदा किया गया, छोटी सी मुसीबत में घबरा उठता है। लाखों का माल उसके पास है, चंद हजार का नुकसान हो गया, कहता कुछ नहीं रहा, हाय मर गए, हाय खप गए, जायदादें उसके नाम पे, सोना चांदी बैंकों में भरा पड़ा है, जरा सा किसी महीने कोई थोड़ा नफे में कमी आ जाए, कहते हाय हाय कारोबार डूब गया। और जब खुशहाली नसीब होती है तो बुखल करने लगता है, बखील बन जाता है। फिर जो पहले करता भी था कोई अपनी जात पे या किसी दूसरे पर या अल्लाह के रास्ते में खर्च, वो भी नहीं करता, कहता नहीं हाथ तंग हो गए। तो हाथ तंग सिर्फ उस रास्ते में होता है जो दूसरों के ऊपर लगाने पे, अपने खर्चे अखराजात में तो कोई कमी नहीं दिखती। मगर वो लोग जो इस ऐब से बचे हुए हों, जो नमाज पढ़ते हैं, जो अपनी नमाजों की पाबंदी करते हैं, उनके ऊपर ऐसी कोई बात नहीं है। और आप भी नमाज पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा गुमान है। कैसे पता चले कि मेरी आपकी नमाज सुकून देने लग गई है? सोचिए जरा, आपको नमाजों का इंतजार लग जाएगा। भूख लगती है ना तो खाने का इंतजार लग जाता है, नींद आती है तो बिस्तर पे जाने का इंतजार लगता है। आप एक नमाज से अगली नमाज के बीच में अगर मुंतजर हैं, बार बार घड़ी देख रहे हैं, आप बार बार देख रहे हैं, अच्छा वक्त नहीं हुआ, अच्छा क्या हुआ, तो सोच लीजिए कि आपकी नमाज जिंदा। और जब नमाज तुम्हें सुकून देने लगे तो समझो कि अल्लाह तुमसे राजी हो गया। अल्लाह क्यों किसी को बुलाए? देखिए, आप हर एक से मिलना पसंद करती हैं, मैं तो नहीं करती। कोई बदतमीजी बद तहजीबी से बात करे, कोई बात का बतंगड़ बनाए, कोई ताने दे, कोई और किसी और की मेरे साथ बैठकर बुराई करे, मैं तो नहीं पसंद करती उससे मिलना। आप भी नहीं करते? ये नहीं आप कह सकते मैं हर एक से मिल सकती हूँ, नहीं कर सकते। तो फिर सवाल लिखिए, अल्लाह हम में से हर एक से बात करना पसंद करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते ही नहीं। मैं माजरत के साथ एक जुमला बोलती हूँ कि कुछ लोग इस काबिल ही नहीं होते कि अल्लाह ताला के सामने खड़े हों, इसलिए कि अल्लाह सुबहाना ताला ने एक क्राइटेरियन रखा है। आप देखते हैं अमूमन कुछ इलाकों में कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिधर जाने के बाद कुछ पाबंदियां लग जाती हैं, भाई इस जगह फलां लोग रह सकते हैं। मस आर्मी का इलाके कैंट का है तो कहते हैं जी आर्मी वाले ही वहां रहेंगे, दूसरे नहीं रह सकते, ऐसे ही है ना। बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ताला ने कुछ लोगों के कैलेपर को देखकर, यानी उनकी बद तहजीबी, उनकी चुगलियां, उनका दूसरों को ताने देना, उनकी आंखों का गंदी चीजों को देखना, ऐसी वैसी चीजों को देखकर अल्लाह सुबहान ताला ने उनको रोक दिया कि इनको ना मेरे सामने लाना, जिसको आप कहते हैं किस मुंह से रब के सामने जाए। अगर हम अल्लाह ताला का दीदार करना चाहते हैं कल कयामत में, तो क्या हम आज अपने आप को, अपने चेहरे को इस काबिल करते कि हम अल्लाह ताला को अपनी बात करा सके? तो जब नमाज की तौफीक नहीं मिलती तो मान लीजिए रब नाराज है, वो तुम्हें अपने दरवाजे पे देखना ही नहीं चाहता। किसी ने एक पहले बात सुनाई, मेरी अपनी ही साथियों में थी, तो बाहर से आई हुई थी और सऊदीया और उसके इर्द गिर्द का आबादी, तो कोई एक साहब थे, अल्लाह उनकी मगफरत करे, जो भी थे और अच्छे ही होंगे, हमारा अच्छा ही गुमान होगा, जद्दा में रहने के बावजूद उम्रे के लिए नहीं जाते थे। कोई कहता भी था तो कहते थे छोड़ दो मुझे कोई नहीं, यानी नमाजी नहीं थे, शौक ही नहीं था और बस दूर ही दूर थे। एक दफा किसी ने बहुत ही आर दिलाई, शर्म करो दरवाजे पे बैठे हो, लोग इतनी दूर से आते हैं, और ये वो जो भी कहा होगा मुझे क्या पता क्या कहा, बात समझाने के लिए कह रही हूँ। तो मारे बांधे उन्होंने कहा अच्छा तुम कहते हो तो मैं चला जाता हूँ, और घर के दरवाजे तक पहुंचे और एकदम गिरे और दिल का दौरा पड़ा और खत्म। हमें नहीं पता उसके साथ क्या हुआ। देखिए कोई आप गुमान ना कीजिएगा, ना मैं जानती हूँ कौन है ना आप, जो मैंने सुना आपको बता दिया, लेकिन देखने में लगता है कि अल्लाह ने रोक दिया कि तुम रूठे हम छूटे, तुम्हें मेरे से बात नहीं करनी, तो मैं कौन सा कोई थोड़ा हुआ हूँ, मेरे भी बड़े हैं। तो अपनी नमाजों को हम चेक करें, अगर हमारी नमाजें हमें सुकून दे दें, हमारी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। ये क्या हल्फ लिया हमें हर वक्त कि हाय हाय ये चीज चली ना जाए, हाय सेल लगी मुझे ना मिली, हाय ट्रैफिक, ये जितना ब्लॉकेज आपके लाहौर में, कभी आप इमेजिन तो कीजिए, आप ज्यादा वक्त रस्तों में गुजारते हैं, फासला वही है, रश की वजह से आप वहां तक पहुंच नहीं पाते, किसको जल्दी है। एक सेल का साइन खुल जाता है, लोग ऐसे जाते हैं, शायद घर में एक कपड़ा नहीं है जो पहन के सो सके। अगर मैं देर से चली गई तो हाय वो डिजाइन मुझे नहीं मिलना। ये जो आज कपड़ों की दुनिया में जो एक मिनोपलीज होकर और एक एक जोड़ा दिखाकर उसको हजारों का करके बेच रहे हैं, हलू, मेरे नसीब की चीज कहीं नहीं जाएगी। अल्लाह के नबी की दुआ, अल्लाहुम्मा ला मानी अली मा अतैत वला मोती अली मा मना तबला यन फौजल जद्दी में कल जत, के किसी को भी कोई रोक नहीं सकता कोई चीज देने से जब तक अल्लाह देना चाहे। अल्लाह ने आपके नसीब में खैर रखी है, सारी दुनिया आपकी दुश्मन हो जाए, आपके दुश्मन बगले पे जाएंगे, अल्लाह आपको नेमत दे देगा। और अगर अल्लाह ने आपके बच्चे के नसीब में कोई चीज नहीं रखी तो जाइए खाना काबा का खिलाफ पकड़ के रोइए, नहीं मिलनी तो नहीं मिलनी। और वला यन फौजल जद्दी मिन खल जत, गाड़ी बाहर खड़ी है, आप जाना चाहते हैं चाबी नहीं मिल रही, गाड़ी खड़ी है चलाई तो वो चली नहीं रही, चीज पड़ी है फायदा नहीं दे रही, बच्चे वालों के बच्चे हैं लेकिन खुशी नहीं दे पा रहे क्योंकि उसके हाथ में। आपका अपने रब पर एतमाद और अंधा एतमाद आपके मामलों को इतना आसान कर देता है कि बात करते हुए बंदा घबराने लगता है। अल्लाह अकबर, मैं अल्लाह तुझसे जो मांगूंगी तूने मुझे दे देना है। देखिए माशाल्लाह आप पढ़े लिखे लोग हैं, कुरान भी आपने तर्जमे से और कहीं ना कहीं से कुछ पढ़ा हुआ है ना। बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने मन और सलवा दिया था, वादी तीह के वो 40 साल दौर के अंदर। अल्लाह ने कहा था कि तुम वो काम करो जिसके लिए तुम्हें पैदा किया है, और वो कहे कि अल्लाह के बंदों को रब से जोड़ो, मैं तुम्हारे खाने पीने का अरेंज करता हूँ, तुम्हें रेडीमेड खाना दूंगा, रेडीमेड कुक खाना मिल रहा है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, ना 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 लन नस्बिर अला ताम वाहिद, हम एक खाने पे सबर कर ही नहीं सकते, हालांकि वो एक नहीं दो थे। मुराद क्या था कि एक ही तरह का खाना रोज नहीं खा सकते, और माजरत के साथ आज हमारे बच्चे भी कई दफा ये जुमला बोलते हैं, अब रोज वही चिकन और वही फिश और वही मटन और वही कबाब और वही पराठे और वही आलू गोश्त, रोज यही कुछ खाएं। आपने जो 7 दिन का खाना एक दिन में पका दिया तो कल फिर वही रखेंगे तो चुप करके खा लेंगे, तीसरे दिन बोलेंगे मामा ये कब तक चलना है, दावत के बाद घर वालों को खाना पड़ता है ना। वो एक साहब थे तो खाने पे बुलाया किसी को तो लोग आए तो खाना लगा, तो मेहमान भी खा रहे हैं तो मेजबान को कहते हैं आप भी खाइए ना, उसने कहा फिक्र ना करो हम नहीं खा के खत्म करना है, तुमने तो आज ही खाना है, हम तो जब तक ये छुटना नहीं हमारी जान छुटेगी है ना। तो जब एक इंसान इन नेमतों को पाता है अल्लाह ताला की तरफ से उसके ऊपर इतनी रहमतें होती हैं, तो याद रखिए कि अल्लाह के साथ कुर्ब बंदे को सुकून देता है। घर में लड़ाई हो रही है, अल्लाह ना करे किसी की भी हो, दो बच्चों की हो रही है, मियां बीवी की हो रही है, सास बहू की हो रही है, इतने में मगरिब की अजान है, हय अल सलाह हय अल फलाह, बताइए क्या होगा। पहले तो हमारी तरह जल्दी से लोग दुपट्टा ढूंढेंगे सर पे लेना अजान हो रही है, फिर थोड़ी देर चुप कर जाएंगे कि अजान में बोलना नहीं है, थोड़ा वो गुस्सा मारा, अब जहर मगरिब का वक्त ही बड़ा थोड़ा है और दोनों ही नमाजी हैं तो सास के ठहर जा जरा मैं नमाज पढ़ के तेरे से निबड़ती हूँ। बहू भी कहती है चलो शुक्र है बला टली, यानी सास नहीं वो लड़ाई बला है, उसने भी जाके वजू किया, सास ने भी, बहू भी करके वजू नमाज पढ़ी, सास ने जो ही वो मुंह पे पानी डाला कुल्ली की मसा किया ना वो सारा मच मुच खत्म हो गया, सलाम फेरते क्या कहेगी छोड़ो मिट्टी डालो मैं अब क्या इसको कहूं। यानी नमाज कैसे बुराई से रोकती है और हमें सुकून देती है। आज बुराई से रोकने से ज्यादा मैं सुकून पे बात करना चाहती हूँ। नमाजी कभी घबराहट में नहीं आता, उसकी एक ही घबराहट है कि मेरी नमाज ना चली जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर में ये चीज देखती हूँ। नमाज से अगली नमाज तक के बीच में सिर्फ वो है कि जिससे अगली नमाज की जमात ना जाए, उनका ये इशू है सबसे बड़ा कि मेरी नमाज कजा ना हो जाए, उनकी बेसुकूनी ये है कि नमाज कजा ना हो जाए। कोई ऐसा काम बीच में ना शुरू करना है ना छोड़ना है जिसकी वजह से नमाज का असर हो, कोई दावत कहीं जाना कोई शादी सारी दुनिया बुलाती रहे, नमाज तो नमाज है और नमाज के बाद भी सुकून। रात की लेट नाइट क्यों नहीं अच्छी लगेंगी दावतें, क्योंकि फजर चली जाएगी, ये सुकून जिसको मिलता है ना वही इंजॉय कर सकता है। तो आपके मेरे लिए आज का एक छोटा सा रिमाइंडर कुरान के बारे में, इतनी एक खूबसूरत आयत सुनने के बाद आज क्या है कि आज से अपने मिजाज को देखिए, गुस्से में आ जाती हूँ, बेसुकून रहती हूँ, घबराहट है, वसवसे आते हैं, धड़का लगा हुआ है, दिल बेकली में है, उदासी है, तो जाकर आज जैसे ब्लड प्रेशर चेक करते हैं ना, अपनी कभी शुगर चेक करते होंगे, आज से आप अपनी नमाज चेक कीजिए। पहली सूरत ये हो सकती है जो बड़ी वर्स्ट है, क्या पढ़ते ही नहीं, नमाज पढ़ते ही नहीं आप, तो वो तो दिल मुर्दा है। दूसरी बात है, पढ़ते तो हैं, जल्दी में पढ़ते हैं, रुकू और क्याम ही पूरे नहीं है, सजूद ही पूरे नहीं है, तो भी गड़बड़ है। तीसरी बात है, जो पढ़ रहे हैं वो समझ ही नहीं आ रहा, तो पहाड़े पढ़ लें आप, उसमें तराने पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, एक ही बात है, आपको पता ही नहीं है क्या। एक बहुत ही रियल क्लिप था, मेरा ख्याल है जर्मनी का था, साल ही हो गया होगा, वक्त गुजरते देर नहीं लगती, तो किसी ने एक कमेंट के साथ एक वीडियो शेयर की थी, लाइव वीडियो थी, कि मेरे ऊपर अपनी सारी नेकी का जो भरम था वो खुल गया, ये मफहूम था उसका वीडियो का। और वो क्या था कि एक शख्स किसी जगह दो तीन लोगों के साथ मिलकर नमाज पढ़ रहा था, एक लड़का आगे नमाज पढ़ा रहा था, तीन चार लड़के पीछे थे, और वो कोई पब्लिक प्लेस थी। तो कहते हैं कि जब हम नमाज पढ़ रहे थे तो सलाम फेरने के बाद देखा तो पीछे कुछ लोग खड़े होकर हमें देखने लग चुके थे, कि जो एक करता है वही सारे करते हैं। तो खैर वो उनसे जब बातचीत हुई, उन्होंने कहा तुम क्या कर रहे थे, उन्होंने कहा हम नमाज पढ़ रहे थे। कहा अच्छा, बड़ा अच्छा लग रहा था। कहा ये एक आगे क्यों था। कहा ये हमारा लीडर था। कहने लगा कि अच्छा, वो जो पढ़ रहा था ना, ऊंची नमाज थी, जहरी थी, तो वो बहुत प्यारा कोई सॉन्ग गा रहा था। उसने कहा वो सॉन्ग नहीं था, वो कुरान था, हमारी होली बुक है, होली बाइबल है हमारी। उसने कहा अच्छा, ये बताओ कि इसका मतलब क्या था। अब ये बंदा कहता है कि मेरी सारी दीनदारी पूरी हो गई। कहता मैं घबरा गया। मैंने उसे क्या कहा, आई डोंट नो, उसको पता होगा जो पढ़ रहा है। उसने कहा चलो मुझे उधर ले जाओ। तो वो उसके पास ले गया जो नमाज पढ़ा रहा था, उसने उसके साथ भी वही बातें करके उसको बाद में पूछा, ये जो तुम पढ़ रहे थे ना, ये क्या था। अब वो भी बगले झाड़ने लगा, उसको भी नहीं पता था, तो बड़ा हैरान था। तुम मुस्लिम दिन में 5 बार वो चीज पढ़ते हो जिसका तुम्हें तर्जुमा भी नहीं आता। अल्लाह अकबर। तो इंशाल्लाह हम आज इस लेक्चर के बाद आगे चलेंगे, तो इसी सीरीज में आपको आगे एक लेक्चर दिखेगा कि बच्चों को नमाज का आदि कैसे करें। तो मैं उसको बच्चों से नहीं शुरू करूंगी, अपने आप से करूंगी, आपको इंशाल्लाह देंगे विद टिप्स कि अपने आप को और अपने बच्चों को नमाज का आदि कैसे बनाएं, क्योंकि आज का ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जो माएँ बेचारी खुद नहीं पढ़ती उनको तो खैर है, लेकिन जब खुद पढ़ने लग जाते हैं ना, तो फिर आपको ये गम पड़ जाता है कि आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।